हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 32, 33 एंड 34। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंचरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू। वर्गीनया कल्पिता श्रीमत् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पोमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्राधरो न परा। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांभर धरुण बिंब फल धरोष्ठा। पुरेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देवेस्तवे, वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तत्तद् गति न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः. ओम ज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदीकार भक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय. प्रथम स्कंद अध्याय 18 जिसका शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप. आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 32, 33 एंड 34. लेकिन इनको पढ़ने से पहले जहां से ये कथा स्टार्ट हुई है वहां से थोड़ा सा संक्षिप्त में श्लोक नंबर 24 से थोड़ा सा रीड करेंगे ताकि हमें यह कथा का जो वेग है वो समझ में आए, जिस तरह से हम इस कथा को अच्छे से समझ सके. तो सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 24 से इस कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एक कदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम बने. महाराज परीक्षित एक बार अपने धनुष और बाण को लेकर विचरण कर रहे थे. मृगयाम वने जंगल में वो शिकार करने के लिए निकले. मृगानुगत शांत मृग यानी हिरण के पीछे पीछे भागते हुए बहुत ज्यादा शांत यानी बहुत थक गए और साथ में क्षुधित स्त्रिषितो भृशम उनको बहुत ही तेज अत्यधिक भूख और प्यास सताने लगी. और उसके बाद क्या, जलाशयम अचक्षाण प्रविवेशे तमाश्रत. फिर एक आश्रम देखा उन्होंने. पहले वो जलाशय के लिए बहुत बहुत ढूंढ रहे थे कि कहीं से मुझे जल का कोई तालाब नदी मिल जाए जिससे मैं जल पीकर अपनी तृष्णा को शांत करूं. लेकिन मिला नहीं बल्कि एक आश्रम देखा तो बहुत प्रसन्न हुए कि एक ऋषि मुनि का आश्रम है, वहां पर जाऊंगा, संत के दर्शन होंगे और साथ में मेरी भूख प्यास भी उसका भी कुछ समाधान अवश्य होगा. तो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा, ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलितलोचनम. देखा मुनि तो शांत आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और इस तरह से उनकी अवस्था को देखा. पति रुदेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम. उन्होंने देखा, उन्होंने अपने प्राण अपने मन अपनी बुद्धि को निश्चेष्ट कर दिया था और स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रम. समाधि में स्थित थे, जागृत सुप्त और सुषिप्त स्थितियों को पार किए हुए थे, बिल्कुल निश्चेष्ट थे. इंद्रियां मन बुद्धि कुछ भी कार्य नहीं कर रहे थे और उनका स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं, विप्रकीर्ण चटाचन्नम विप्रकीर्णम जटा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उनकी जटाएं जो हैं वो पूरे शरीर पर बिखरी हुई थी, और रव रवेणा जिनेन च यानी कि मृगशाला के चर्म पर वो बैठे हुए थे। लेकिन अब महाराजा परीक्षित से भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि विषुप्त तालु रुधकम, तालु तक वो उनका गला जो है वो सूख गया था, कांटे पड़ गए थे, और तथा भूतम मया शतम वो अपनी तृष्णा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और अब मुनि से याचना कर रहे थे कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपया मुनिवर मुझे एक ग्लास पानी पिला जी, पानी पीना है मुझे, मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि मुझे पानी नहीं मिला, तो कृपया मुझे आप अपनी समाधि का त्याग कीजिए, मुझे पानी का एक ग्लास पिला दीजिए। बहुत बहुत उन्होंने याचनाएं की, परंतु आगे कहते हैं अलब्ध तीर्ण भूम्यादि असंप्राप्तार्घ्य सूनृतम अवज्ञात मेवात्मानम मन्यमान शुचो चुकोपः। अलब्ध तीर्ण भूम्या, कुछ भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, न बैठने के लिए स्थान मिला, न ही उनको कोई और यथोचित राज्य अथोचित उनका कोई सत्कार नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनको पानी का एक गिलास भी नहीं मिला, और ना ही मुनि ने मधुर वचन से उनका स्वागत किया। तो महाराजा को ऐसा लगा कि क्योंकि वैदिक संस्कृति के जो उनको जो फॉलो करते हैं वैदिक संस्कृति को, वो तो अपने घर में आए हुए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं जो अतिथि देवो भव, अतिथि तो वैसे ही देव है, और अब तो ये महाराज जो है वो अभी पूरी पृथ्वी के महाराज जो है उनके यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं, और उनको एक गिलास का जल का भी सम्मान नहीं मिला, बिठाया भी नहीं गया। महाराज परीक्षित राज्योचित सत्कार का की उपेक्षा नहीं कर रहे थे, वो जानते थे कि मुनि के पास इतना सब धन नहीं है, इसलिए मुझे मेरा राजा की तरह तो सत्कार नहीं करेंगे, लेकिन एक शत्रु की तरह तो करते, कम अज कम बिठा के पानी का एक गिलास तो पूछते। मगर मुनि ने तो इतना भी नहीं किया, तो राजा को लगा कि मेरा कितना बड़ा इन्होंने मेरी उपेक्षा की है, और इस तरह से राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ, और दुख के कारण क्रोध आने लगा, ये स्वाभाविक था। लेकिन राजा क्योंकि परीक्षित था और सामने भी एक ब्राह्मण था, तो ये थोड़ा सा अभूतपूर्व था, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की योजना है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं उनसे सब जन सामान्य का कल्याण और हम सब पति जीवों का कल्याण करने के लिए महाराजा परीक्षित आज भूख और प्यास से विह्वल हो गए हैं, और उसके बाद आज उनको क्रोध आ रहा है एक ऋषि के ऊपर, इसलिए वो बताते अभूत पूर्व सहसा श्रुति श्रुतिभ्यामर्जितात्मन के भूख और प्यास से पीड़ित हो गए, और सहसा अचानक से ऐसा हुआ ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्राह्मण मत्सरो मन्यरे वच, हे ब्राह्मणों आज ईर्ष्या और क्रोध के कारण महाराज परीक्षित एक ब्राह्मण के साथ क्या कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं सतु ब्रह्म ऋषिरम से गतासुम उरगम रुषा, रुषा क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, सतु ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषि रम से ब्रह्म ऋषि के कंधे पर गतासु मरा हुआ एक सर्प रख दिया, कैसे रखा, विनिर्गच्छन् धनुष कोट्या धनुष के अग्रभाग से उठाया और उनके कंधे पर रख दिया, और उसके बाद निधाय पुरमागत अपने पुर में अपने महल में वो चले गए। लेकिन एक शुद्ध भक्त थे इसलिए उनको महल में जाने के बाद पश्चाताप होने लगा, वे सोचने लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या पता कि ये ऋषि बहुत ही गहरी तपस्या में हो इसीलिए वो अपने नेत्र बंद किए हो।
ऐसा भी हो सकता था कि उनकी तपस्या या समाधि जो है वो झूठी हो और वो क्षत्रिय, मुझ जैसे क्षत्रिय का सम्मान करना अपनी अपनी शान के खिलाफ समझ रहे होंगे, इसीलिए ऐसा किया। तो ऐसा मन में बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही थी, इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं, एष किम नृभिताशेष करणो मिलित ते क्षण, के ध्यान की मुद्रा में वो जब अपनी इंद्रियों को बंद करके, यानी सारे इंद्रियों के कार्य बंद करके आंखें मूंद करके बैठे हुए थे, हो सकता है वो सच्चा ध्यान हो या फिर मिशा समाधि राहुस्त्री केमनो स्यात् क्षत्र बंधुना, या फिर झूठी समाधि में वो क्षत्रियों का सम्मान करने से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। घर पे महाराज परीक्षित जो है अपने महल में ऐसा सोच रहे थे, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वही शमीक ऋषि, उनका एक पुत्र था छोटा जिसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि अपने बालकों के साथ खेल रहा था, और एक बालक ने जो कि जिसने ये पूरी घटना देखी, उसने आके जल्दी से श्रृंगी ऋषि को बताया, पता है तुम्हारे पिताजी के साथ एक राजा ने क्या किया, एक राजा आया था आपके घर पे, वो पानी मांग रहा था, परंतु आपके पिताजी तो समाधि में थे, वो भला कैसे सुनते, और महाराजा ने उनके साथ कैसे सलूक किया कि एक मरे हुए सर को उनके गले में डाल के आ गए। तो जब श्रृंगी ने ऐसा सुना तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया कि ये राजा अपने आप को समझता क्या है, ये नहीं देखता कि सामने ऋषि ऋषि हैं तो ऋषि के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, आजकल के राजा लोग को कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो इसी बात को यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं, मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण कीजिए, तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन बालकौर्भकै राज्ञागम प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन बालकौर्भकै राज्ञागम प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकौर्भकै राज्ञागम प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, अति तेजस्वी मतलब बहुत ज्यादा शक्तिमान था उनका बेटा जो था, तस्य पुत्रो मतलब उस शमी ऋषि का जो पुत्र था वो बहुत ज्यादा तेजस्वी था। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि छोटा बेटा था तो उसके अंदर इतना तेज कहाँ से, उसका कारण बताएंगे अभी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि क्योंकि महाराज परीक्षित का जो शासन था वो बहुत ही उत्तम था, और उस उत्तम शासन के कारण ब्राह्मण के बालक में भी इतना तेज था, क्योंकि जो शुद्ध राजा होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, तो इसके कारण ब्राह्मण जो है वो अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जब उनको पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त था। अब ये शमीक ऋषि ने अपने उनको इतनी अच्छी प्रोटेक्शन राज्य की तरफ से थी कि वो अपनी संतान को अपने शिष्यों को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते थे, इसी के कारण छोटे बच्चों के अंदर भी इतना तेज इतना शक्ति आ गई थी, तो इसीलिए उनके अंदर, इसीलिए वो बता रहे हैं सुत गोस्वामी, तस्य पुत्रोति तेजस्वी, बहुत ज्यादा तेजस्वी था, लेकिन था तो अभी बच्चा ना, वो अभी तक वैदिक संस्कृति को पूरी तरह से समझा नहीं था, कर क्या रहा था, विहरन बालक और भके, भके मतलब और भके का मतलब है जो अभी बचका ना खेल खेल रहा था बालकों के साथ, विहरन यानी खेल रहा था, बचका ना खेल खेल रहा था, उसके अंदर अभी तक वो मैच्योरिटी नहीं आई थी जो ब्राह्मण के अंदर हो, लेकिन शक्ति उसके पास थी, और राज्ञागम प्रापितं तातम, राज्ञागम राजा के द्वारा, तातम यानी उसके पिताजी के ऊपर जो आपत्ति आ गई थी, राजा ने जो उनके पिताजी के साथ सुलूक किया था, जब उसने सुना कि एक राजा आया और उसने एक मृतक शव को आपके पिताजी के गले में डाल दिया, जब राज्ञयम् प्रापितम् तातम्, जब उसने इस बात को सुना, श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्, तत्रेदम् श्रुत्वा मतलब ऐसा सुनने के बाद, तत्रेदम् अब्रवीत्, उसने क्या कहा, उसने कितने घिनौने शब्द उच्चारण किए उस राजा के लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका अनुवाद देखिए। उस मुनि के एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली था, शक्तिमान था। वह अनुभव विहीन बालकों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन से अल्पवय वाला बालक जो अभी अन्य अनुभव विहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। ये सब महाराज परीक्षित के सुंदर शासन के कारण। यह बालक श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी को ब्रह्मचर्य का पूरा बहुत अच्छी तरह से शिक्षण दिया जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज और शक्ति आ जाती है, जो कि उस श्रृंगी ऋषि के अंदर भी आ गई थी। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के चार आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अब कलयुग जो था वो आना तो था ही, और वो एक अवसर प्राप्त करना चाहता था कि किस प्रकार से मैं ब्राह्मण के जो संसार के जो सबसे उत्तम वर्ग यानी ब्राह्मण है उसके ऊपर किस तरह से अटैक करूं, और वो कब से इस ताक में था और आज उसे यह अवसर प्राप्त हो रहा था कि वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा इस ब्राह्मण कुल में जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चूंकि कलयुग जीवन के चार आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश हो सके। तो ये अनुभव विहीन बालक जब एक राजा के प्रति इतना दुस्साहस करने के लिए क्रोध में आ गया है, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, अब वो क्रोध से कलयुग को अवसर प्राप्त करा रहा है कि वो इस वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश हो जाए। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा का भाव इस ब्राह्मण बालक में उत्पन्न हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। अभी कली का प्रभाव क्या हुआ? घृणा। ब्राह्मण की क्षत्रिय के प्रति घृणा हो गई, जिसके कारण अब जो यानी कि घृणा का भाव इस ब्राह्मण बालक में उत्पन्न हुआ और इस तरह से जीवन के निम्नतर आश्रम जो है वो उस समय से घृणित नजरों से देखे जाने लगे। उन्होंने क्या अभी आगे बताया, इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराजा परीक्षित हुए। यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो उनके अंदर ब्राह्मण पुत्र के अंदर ये कलयुग का आक्रमण हुआ और इस कलयुग के आक्रमण के पहले शिकार, पहला अन्याय किसके साथ हो रहा है? महाराजा परीक्षित के साथ। ये वास्तव में अन्याय है, क्योंकि महाराजा परीक्षित ने इतनी बड़ी भूल नहीं की थी जिसके बदले में उन्हें मृत्यु दंड प्राप्त हो। ये तो महाराजा थे, उनका सत्कार होना अवश्यंभावी था, और अगर वो क्षत्रिय थे, उनका अपमान हुआ है, तो उसके प्रति कोई न कोई प्रतिक्रिया तो होनी अवश्य थी, और उन्होंने ये किया तो इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए इस श्रृंगी ऋषि ने उन्हें मृत्यु का शाप दे दिया। लेकिन ये सब भगवान की कृपा और भगवान की योजना से हो रहा है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसे आगे श्री रूपा जी कहते हैं, इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराजा परीक्षित हुए और इस तरह कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया गया संरक्षण शिथिल पड़ गया। अभी राजा द्वारा किया हुआ यानी कि राजा ने जो प्रोटेक्शन प्रदान की थी वो सब अब धीरे धीरे क्षीण होती गई और अब जो है ब्राह्मण जो है वो क्षत्रियों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं वो सुनिए कि ब्राह्मण बालक एक राजा का और वो भी इतने शुद्ध भक्त राजा जिनके शासन के अंदर वो रहकर अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा कर रहे हैं, जिसके अंदर रहकर वो अपनी साधना को पूरा कर रहे हैं, उसी राजा के विषय में वो बोल रहा है, अहो अधर्म पालानाम पीवनाम बलिभुजामिव स्वामिन् यगम यत्तासानाम द्वारपानम शुनामिव। अहो अधर्म पालानाम पीवनाम बलिभुजामिव स्वामिन् यगम यत्तासानाम द्वारपानम शुनामिव। अहो अधर्म पालानाम पीवनाम बलिभुजामिव स्वामिन् यगम यत्तासानाम द्वारपानम शुनामिव। अहो अधर्म पालानाम, देखो जरा ये शासक हैं और इस तरह से अधर्म कर रहे हैं, ये शासक होकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्या उनको ये कार्य शोभा देता है। पीवनाम बलि भुजामिव, पीवनाम मतलब पाले गए, बलि भुजाम कौवों की तरह। अगर कोई घर में कौवा पालता है ना तो उसकी एक गंदी आदत होती है, बाहर से गंदगी लाकर हमारे घर में ही फेंक देता है। उसी तरह आगे कहते हैं स्वामिन यगम यद दासानम, ये तो दास है, ये जो क्षत्रिय होते हैं वो तो ब्राह्मणों के दास होते हैं और ब्राह्मणों के दास होने के बावजूद भी अपने स्वामी के साथ इतना बड़ा स्वामिन यगम, स्वामी को अगम यानी इतना अपराध किया उसने, दास होकर नौकर होकर किस क्या किया उसने। द्वारपानम शुनामिव, द्वारपानम यानी दरवाजे की रखवाली करने वाले, शुनामिव कुत्ते की तरह। एक दरवाजे पर जो रखवाली करने के लिए हम कुत्ता रखते हैं ना, वो भी कभी कभी क्या करता है, गंदगी लाकर हमारे घर में फेंकता है। तो ये भी कुत्ते और कौओं का सा व्यवहार कर रहा है ये राजा होकर। जरा देखिए तो सही राजा के करतूत, ये राजा हमारा दास है। दास कैसे बोला उसने, जैसे इसने बोला है कि स्वामी नियगम यद दासाना, ये स्वामी स्वामियों के साथ अपराध करता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि जो ये चार वर्ण है ना उसमें ब्राह्मण जो है वो सर है, सर की जगह पर दिमाग, जो बुद्धि है वो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है वो भुजाएं यानी बल है। अब होता क्या है कि भुजाएं जो है वो पूरे शरीर की सुरक्षा तो करती हैं, जैसे क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों की सुरक्षा तो करता है, लेकिन जो जो क्षत्रिय होता है उसे कार्य किसके द्वारा करना होता है, जो ब्राह्मण के निर्देश होते हैं ना उसके द्वारा। यानी क्षत्रिय अपनी बुद्धि यूज करके निर्णय नहीं लेता, क्षत्रिय को सदैव ब्राह्मणों के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्षत्रिय जो होते हैं वो ब्राह्मण के दास होते हैं, तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों का आदेश पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इतना बड़ा अपराध उसने इनके साथ किया। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो दासों के सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप डालते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का शिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहों, बाहों की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहों को सर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चार वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। भगवान ने खुद कहा है कि चातुर्वर्णीय मया सृष्ट गुण कर्म विभागश, जो उनके गुण और कार्य हैं उनके अनुसार चार वर्ण बनाए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्राह्मण है, क्योंकि वो शमीक ऋषि का पुत्र है, इसीलिए ब्राह्मण, उनके गुणों को नहीं देखा गया कि वो रजोगुणी है तमोगुणी है कैसा, उसको नहीं देखा। बस वो शक्ति प्राप्त कर गया, ब्राह्मण बन गया और अब वो कुछ कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताएंगे आगे कि स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने की का अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक ही बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वैसे तो गुणों और कर्मों के अनुसार ही वर्ण आश्रम बनते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक है कि अगर किसी का पिता ब्राह्मण है तो उसको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है पुत्र को, कि वो आसानी से ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के निर्देशन को पिता उसको बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकता है, तो वो इजीली एक शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। जिस तरह एक डॉक्टर का बेटा जो होगा ना, वो अगर MBBS करेगा और डॉक्टर बनने का प्रयास करेगा तो उसको बहुत ईजी रहेगा, लेकिन अगर एक इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बनेगा या फिर एक बिजनेसमैन का बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसको इतना ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको घर में ऐसा सरकमटेंस नहीं मिल रहा और दूसरा ऐसा जो पिता जो है वो उसको उस तरह से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये अच्छा है कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए और पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। उसको चिकित्सक या ब्राह्मण ही बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बन सकता है और ना ही चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों का तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। योग्यता तो होनी चाहिए लेकिन फिर भी अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर परम ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण से उपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था क्योंकि वह अनुभव शून्य था। अभी उसने ब्राह्मण का पद तो प्राप्त कर लिया था लेकिन अभी वो संस्कृति का अभाव था, इतना मैच्योर नहीं हुआ था क्योंकि अनुभव शून्य था। अभी तक वो बच्चा था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से फूल उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए था। राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है लेकिन फिर भी उसने इतने दुःशब्द कहे। उसने कहा कि पीवनम बलिभुजामिव स्वामी यज्ञम यद दासानाम द्वारपानम शुनामिव। कुत्तों की तरह द्वार का रखवाली करने वाले कुत्ते हैं ये, और उसने ऐसा किया अपने स्वामी के साथ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत गलत किया। यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से फूल उठा था और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा परीक्षित ही इस अर्थ में राज्य का रखवाला कुत्ता हो सॉरी राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य का रखवाला अथवा कुत्ता होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। किंतु उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का द्योतक है। भले ही राजा रखवाली करता है लेकिन उसको कुत्ता नहीं बोलना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब संस्कृति के बिना जन्म सिद्धि अधिकार पर बल दिया जाने लगा। अभी संस्कृति ये नहीं देखी गई कि उसके अंदर ऐसे गुण है या नहीं है, बस जन्म के अधिकार पर ही किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय बना दिया जाता है। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ है, ये कलयुग का समय है और यहाँ से ब्राह्मण जाति का पतन हुआ है। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए पश्चाताप का कारण बना, जैसे कि हम आगे देखेंगे। जब ब्राह्मण के ये श्रृंगी के पिता सुनेंगे कि इसने ऐसा किया है, इतना बड़ा शाप दिया है, तो बहुत पश्चाताप करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपितः सकथं तद्गृहे दास्थः सबाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मण क्षत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपितः सकथं तद्गृहे दास्थः सबाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मण क्षत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपितः सकथं तद्गृहे द्वास्थः सबाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मण क्षत्र बंधुर ही गृहपाल निरूपितः, यानी कि ये जो ब्राह्मण जो है, क्षत्र बंधु यानी जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, निश्चित ही गृहपाल, गृहपाल कहते जो घर की रक्षा करते हैं, तो ये घर की रक्षा करने वाले होते हैं। क्षत्रियों को चाहिए कि बाहर खड़े होकर ब्राह्मणों की रक्षा करें, उनको कभी भी घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण क्षत्र बंधु ही गृहपाल निरूपिता, उनका काम है कि बाहर दरवाजे पे बैठकर चौकीदारी करें, बाहर दरवाजे पे बैठकर निगरानी करें कि कोई ब्राह्मणों को कष्ट ना पहुंचाए। ये उनका काम ये है। सकथम तद गृह गृह द्वास्था, सकथम ऐसे बाहर खड़े होने वाले कुत्ते किस बल पर, कथम यानी किस बल पर, तद गृह अपने स्वामी के घर में द्वास्था द्वार पर बैठा जो होते हैं, द्वार पर बैठे होते हैं, उनको क्या अधिकार है कि अपने स्वामी के घर में प्रवेश करें। और सबांडम भोक्तुमर्हति, सबांडम उन्हीं के बांडम कहते बर्तनों में भोक्तुम खाने के लिए उनके अंदर योग्यता नहीं होती है। जैसे कुत्ते होते हैं, उनको ये थोड़ी अधिकार होता है कि घर पे आए और जिस थाली में जिस प्लेट में जो उसका मालिक है वो खा रहा है, उसी प्लेट में आकर वो खाना शुरू कर दे, ये तो उसको अधिकार नहीं है, उसको इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। वो बाहर खड़ा होने वाला एक कुत्ता है, तो उसको उसी के लिमिट में रहना चाहिए। ये राजा वो तो हमारे रखवाली करने के लिए होते हैं, उनको वहीं पर खड़ा होकर रखवाली, इसको अधिकार क्या है मेरे घर पे आकर मेरे पिताजी से पानी मांगने का या कुछ खाना मांगने का, अधिकार ही नहीं है इसको तो, ऐसे बोल रहा है वो। अनुवाद देखिए, राजाओं की संता ने निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया था। जानता था वो कि अभी वो जानता तो था कि उसने उसके पिताजी ने पानी नहीं मिला, लेकिन वो अपने पिताजी की गलती नहीं देख रहा है कि इतना बड़ा राजा उसके पास आया है और वो समाधि में बैठा हुआ है, वो उस राजा का सत्कार नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी वैदिक संस्कृति है? वैदिक संस्कृति में तो ये बताया जाता है कि यदि शत्रु भी घर में आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, लेकिन वो अपने पिता की गलती नहीं देखा। आगे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की सत्कारशीलता की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। उसने बोला कि मेरे पिताजी ने बिल्कुल सही किया, उपयुक्त शिष्ट अशिष्ट ढंग, ये तो गलत कार्य किया था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि मेरे पिताजी ने तो बिल्कुल सही किया, बल्कि राजा ने गलत किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार ना किए जाने का तनिक भी दुख नहीं था। एक बार भी उसके मन में ये नहीं आया कि राजा आए हैं घर पे तो उनका सत्कार होना चाहिए था, उनको आसन पे बिठाना चाहिए था, उनको है ना जल देना चाहिए था, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसको उसे राजा के ठीक से सत्कार किए जाने की तनिक भी उसका दुख नहीं हुआ। उल्टे वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों के द्वारा लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। गलत काम किया था, राजा का सत्कार नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उसी चीज को सही ठहरा रहा था। मेरे पिताजी ने तो बिल्कुल सही किया, वो तो मालिक है, उसको जरूरत क्या है ऐसे कुत्तों के साथ है ना बात करने की या उसको खाना वाना खिलाने की। तो मेरे पिताजी ने सही किया, ये राजा जो है उसने अपने पद की मर्यादा, उसका पद है बाहर खड़ा होकर रक्षा करनी चाहिए हमारे घर की, ना कि घर के अंदर घुसकर हमारे बर्तनों में खाना की योग्यता को सिद्ध करने के लिए उसको अंदर आना चाहिए था। आगे कह रहे श्री प्रभुपाद जी, उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुस कर ही उसी पात्र में जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा ही मानसिकता पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है, और हम यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, हमारे सारे समाज की व्यवस्था का सत्यानाश करने का, पतन करने का यहाँ पर पूरा का पूरा क्रेडिट एक अनुभव शून्य ब्राह्मण शिक्षणी के ऊपर है कि उसने बगैर सोचे समझे इतना गलत व्यवहार कर रहा है, इतनी उपशब्द बोल रहा है राजा के लिए। एक अगर आप ज्ञानी हो, वो शक्तिमान तो था साथ में ज्ञानी भी था, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो बगैर सोचे समझे राजा को कभी कुत्ता तो कभी कौवा बोल रहे। आगे कहा, जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले ही स्वामी ने कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमीक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। अभी वो क्या सोच रहा है कि बस सारी गलती राजा की थी, राजा ने गलत किया, उसको मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए था, घर में घुसकर मेरे हमारे बर्तनों में खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए थी, कुत्तों की तरह बाहर खड़ा रहता, भौंकता रहता, यदि आके मेरा पिताजी कुछ उसके सामने यदि कुछ फेंक के जाता तो खाता, वरना ऐसे ही चला जाता, उसको क्या जरूरत थी मेरे पिताजी के साथ इस तरह का व्यवहार करने की। तो उसने सारा का सारा दोष जो है वो राजा परीक्षित के ऊपर सौंप दिया। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।